आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम पूजा है और आज हम जो सीबीएसई की क्लास 8 की जो इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर बुक है इट्स सो हैपन, उसको कंटिन्यू करेंगे और आज हम हमारा तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका टाइटल है द सेल्फिश जायंट। तो सब अपनी अपनी किताबें निकाल लो और चैप्टर 3 जो है वो खोल लीजिए, यानी कि पेज नंबर 17 आप खोल लीजिए। अब ये जो बुक, ये जो चैप्टर है द सेल्फिश जायंट, इसके राइटर है ऑस्कर वाइल्ड। इस चैप्टर को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा शुरू में बता देती हूँ चैप्टर के बारे में। तो ये जो चैप्टर है ये 3 भागों में है, 3 पार्ट्स में है। तो हम सबसे पहले जो है फर्स्ट पार्ट ख़त्म करेंगे, फिर सेकेंड और फिर थर्ड। तो अब शुरू करते हैं हम। तो ये जो टाइटल है, अब तक आप सब लोगों ने अपनी अपनी किताबें खोल ली होंगी। तो ये जो टाइटल है द सेल्फिश जायंट, इसका मतलब होता है, सेल्फिश का मतलब होता है मतलबी, और जायंट का मतलब होता है जो कि बहुत ही बड़ा होता है, दिखने में लंबा चौड़ा बहुत ही बड़ा होता है, आम इंसानों की हाइट से काफी ऊंचा होता है, भयानक राक्षस जैसा दिखता है, उसे हम जायंट कहते हैं। तो इस कहानी का जो ये पहला पार्ट है इसको मैं थोड़ा सा पहले बता देती हूँ, फिर हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो इस पार्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा कि एक जायंट है जो कि 7 सालों से अपने घर पे नहीं रह रहा है, वो अपने दोस्त के घर पे रह रहा है 7 सालों से। तो इन 7 सालों में जो है उसके घर में कोई भी आता जाता नहीं है, बस उसके गार्डन में जो है कुछ बच्चे हैं जो दोपहर की छुट्टी के बाद उस गार्डन में खेलते हैं। तो वो 7 साल से बिल्कुल मजे में खेल रहे हैं, उनको कोई वहां से भगाने वाला नहीं है। फिर क्या होता है कि 7 साल के बाद वो वापस आ जाता है, वो जो जायंट होता है जिसका वो गार्डन होता है वो वापस आ जाता है, और जैसे ही वो उन बच्चों को वहां खेलता हुआ देखता है उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो उन्हें डरा धमका के वहां से भेज देता है और कहता है कि मेरा गार्डन बस मेरा ही गार्डन है और यहाँ बस मैं ही खेलूंगा, कोई भी और दूसरा यहाँ पर नहीं खेलेगा। फिर क्या होता है कि पूरे देश में जो है स्प्रिंग का मौसम आ गया है, स्प्रिंग यानी बसंत का मौसम, बसंत का मौसम आ गया है पूरे देश में, और जो जायंट है केवल उसी का गार्डन ही ऐसा है जहाँ पर बसंत अब तक नहीं आई है। वो अपने चारों ओर देखता है कि हर जगह फूल खिले हुए हैं, टहनियों पे नई नई हरी हरी पत्तियां आ गई हैं, पक्षी जो हैं इधर उधर चहक रहे हैं, उड़ रहे हैं, घास आ गई है काफी सॉफ्ट सॉफ्ट हर तरफ, लेकिन बस उसके गार्डन में ही अब तक बसंत नहीं आई है। उसके चारों ओर है लेकिन उसके गार्डन में नहीं है। उसके गार्डन में अभी भी जो है बर्फ जमी हुई है घास पर, और अभी भी सर्दी का ही माहौल है उसके गार्डन में। तो जब वो ये देखता है तो बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बसंत ने मेरे गार्डन में आने में इतनी देरी क्यों कर दी। फिर क्या होता है कि एक दिन उसे एक पक्षी की गाना गाने की आवाज सुनाई देती है, एक पक्षी जो होता है वो गाना गा रहा होता है, तो वो सुनता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। तो जब वो अपनी खिड़की से झांक करके देखता है तो वो क्या देखता है कि उसका गार्डन जो है वो फिर से हरा भरा हो गया है, और उसके गार्डन में भी अब जो है बसंत आ गई है। वो जायंट क्या करता है, बच्चों को तो भगा देता है और फिर एक बड़ी सी दीवार बना देता है ताकि बच्चे दोबारा कभी मेरे गार्डन में नहीं आए। तो फिर वो बच्चे क्या करते हैं, जैसे तैसे उस दीवार में होल बना लेते हैं और उस होल से अंदर आ जाते हैं गार्डन में और वहां खेलने लग जाते हैं। तो जैसे ही बच्चे आए गार्डन में लौटे वापस, वैसे ही बसंत भी लौट आती है। तो इस पार्ट में हम बस इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन। एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन। हर दोपहर जब बच्चे स्कूल की छुट्टी हो जाती थी, स्कूल खत्म हो जाता था, तब उस जायंट के गार्डन में आते थे और वहां पे खेलते रहते थे। इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। वो जो गार्डन था वो बहुत ही सुंदर था, लवली यानी सुंदर, और उस गार्डन में जो घास था वो काफी सॉफ्ट था, ओके, सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, काफी मुलायम घास था गार्डन में। हियर एंड देयर Over the grass stood beautiful flowers like stars. इधर उधर घास पे जो है फूल खिले हुए थे, जो भी नीचे घास थी उस पे फूल खिले हुए थे, प्यारे प्यारे छोटे छोटे फूल खिले हुए थे। और वो फूल ऐसे इस तरीके से सुंदर लग रहे थे जैसे कि आसमान में तारे लगते हैं। एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इन टू डेलिकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट। और वहीं पे जो उस गार्डन में जो है 12 पीच ट्रीज थे और ऑटम एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट। ऑटम कौन सा महीना होता है? पतझड़ का। तो पतझड़ के टाइम पर जो है बसंत में इनको फूल लग जाते थे आड़ू के पेड़ों को, और पतझड़ में जो है फ्रूट आ जाते, यानी आड़ू उगाते थे, फ्रूट आ जाता था, जैसे कि लिखा भी हुआ है इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट। पतझड़ के मौसम में फल लग जाते थे आड़ू के पेड़ पे। द बर्ड सेट ऑन द ट्रीज एंड सेंग सो स्वीटली दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू देम। जो पक्षी थे वो इतनी प्यारी प्यारी आवाज में गाना गाते थे पेड़ पे बैठ के कि बच्चे जो थे वो अपना खेल तक छोड़ देते थे, जो भी वो गेम खेल रहे होते थे वो भी वो छोड़ देते थे और उन पक्षियों को सुनने लग जाते थे, और आपस में एक दूसरे से कहते थे कि हाउ हैप्पी वी आर हियर, हम यहाँ पर कितने खुश हैं, यहाँ यानी इस गार्डन में, इस जायंट के गार्डन में हम कितने खुश हैं। वन डे द जायंट केम बैक। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ऑग्रे एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 ईयर्स। एक बार क्या हुआ कि जायंट जो है वो वापस आ गया। वो अपने दोस्त के यहाँ पर गया हुआ था और 7 साल से अपने दोस्त के साथ ही रह रहा था, और उसके दोस्त का नाम क्या था? कॉर्निश ऑगरे। अब जाहिर सी बात है जायंट का दोस्त तो जायंट ही होगा, तो ये कॉर्निश ऑगरे भी एक जायंट था, एक लंबा चौड़ा कद का जायंट था, राक्षस जैसा दिखता था, भयानक दिखता था। और ये कहाँ पे रहता था? नीचे हमारे दिया हुआ है, हमें पेज नंबर 17 पे एकदम नीचे दिया हुआ है कॉर्निश ऑगरे जहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? अ जायंट ऑफ कॉर्नवॉल इन द यूके। यूके जो है लंदन में जो है ये रहता था। लंदन में कहाँ रहता था? कॉर्नवॉल, कॉर्नवॉल करके एक जगह है, वहां पर ये जायंट रहता था। और ऑगरे, ऑगरे के बारे में क्या दिया हुआ है कि इन लीजेंड्स एंड फेरी स्टोरीज अ क्रूअल जायंट हु ईट्स पीपल, इन कॉमन यूसेज अ वेरी फ्राइटनिंग पर्सन। ऑगरे के बारे में जो है कहानियों में ये बताया गया है कि जो ओग्रे होते हैं वो ऐसे जायंट होते हैं जो कि लोगों को खाते हैं और काफी डरावने भी होते हैं। ठीक है, ये ओग्रे का मतलब है। और कॉर्निश ओग्रे यानी ऐसा जायंट जो कि कॉर्नवॉल यूके में रहता था, और ये इसका दोस्त था। ठीक है, उसके दोस्त का क्या नाम था? कॉर्निश ओग्रे। वेन ही अराइव्ड ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन। जब वो वहां पर आया तो उसने क्या देखा कि उसके गार्डन में जो है बच्चे खेल रहे थे। व्हाट आर यू डूइंग हियर? ही क्राइड इन अ वेरी ग्रफ वॉइस एंड द चिल्ड्रन रैन अवे। ग्रफ वॉइस का मतलब क्या होता है? रफ, बहुत ही हार्ड, बहुत ही गुस्से वाली आवाज। तो उस गुस्से वाली आवाज में वो बच्चों को कहता है कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और ऐसे सुन करके जो वो बच्चे हैं वो भाग जाते हैं। अब पेज नंबर 18 पे आते हैं। माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन सेट द जाइंट, एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। अब वो उन बच्चों को भगाते हुए क्या कहता है कि मेरा गार्डन सिर्फ मेरा ही गार्डन है, और अगर यहाँ पर कोई और खेला तो उसके साथ बहुत ही बुरा होगा, और यहाँ पर सिर्फ मैं ही खेलूंगा, ये मेरा ही गार्डन है। तो फिर वो क्या करता है कि ऐसा बोलने के बाद जो है एक बड़ी सी दीवार बना देता है अपने गार्डन के चारों ओर कि कोई वहां आ ना पाए, और एक नोटिस बोर्ड पे लगा देता है, और उस नोटिस बोर्ड पे क्या लिखता है कि ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेसपासर्स का मीनिंग नीचे दिया हुआ है दोस्त हु एंटर समबडीज लैंड या फिर प्रॉपर्टी विदाउट हिज और हर परमिशन। घुसपैठिए जो होते हैं, इसका हिंदी में मतलब होता है घुसपैठिए, जो किसी की भी प्रॉपर्टी में, किसी की भी जमीन में, घर में, गार्डन में बिना उस इंसान की परमिशन के, इजाजत के घुस जाते हैं, उन्हें ट्रेसपासर्स कहते हैं। और प्रोसिक्यूटेड का मतलब क्या होता है, पनिशमेंट, उसे पनिशमेंट मिलेगी, सजा होगी। तो वो लिख देता है उस नोटिस बोर्ड पे कि ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, यानी कि घुसपैठियों को सजा मिलेगी। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट, वो जायंट बहुत ही मतलबी था। अब जो जैसे जैसे मुश्किल वर्ड के जो मैं मीनिंग आपको बताते जा रही हूँ, आप अंडरलाइन करके उसके ऊपर ही तुरंत उसका जो है मतलब लिख लीजिए, ठीक है। सेल्फिश यानी मतलबी। द पुअर चिल्ड्रन हैड नो वेयर टू प्ले, बेचारे बच्चों के पास अब कोई भी जगह नहीं थी खेलने की। दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड, बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स एंड दे डिड नॉट लाइक इट। इन्होंने कोशिश तो की कि वो सड़क पर खेल लें, लेकिन सड़क पे हमेशा धुआं, धूल धुआं ही रहता था, और काफी छोटे छोटे जो है हार्ड पत्थर थे, पथरीले से जो जो चुभने वाले जो पत्थर होते हैं वो थे, और उन्हें वो पसंद नहीं थे। दे यूज टू वेंडर राउंड द हाई वॉल्स वेन देयर लेसन्स वर ओवर एंड टॉक अबाउट द ब्यूटिफुल गार्डन इनसाइड, हाउ हैप्पी वी वर देयर, दे सेड टू ईच अदर। और जब उनके उनके स्कूल की जब छुट्टी हो जाती थी तो वो फिर से वो गार्डन के पास आते थे छुट्टी होने के बाद, स्कूल खत्म होने के बाद, और जो बड़ी सी जो दीवार अब उस जाइंट ने बना दी थी उसके आसपास ही मंडराते रहते थे, घूमते रहते थे। वेंडर का मतलब घूमना, तो उसके आसपास घूमते रहते थे और ये सोचते थे कि हम इसके अंदर कैसे जाएं। वो मतलब बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे, उनको खेलने की जगह नहीं थी, और वो फिर उसी गार्डन के आसपास मंडराते रहते थे और एक दूसरे से कहते थे कि हाउ हैप्पी वी वर देयर, कि हम वहां कितने खुश थे। अब वो वहां क्या है, वहां भी गार्डन, वहां से उनका मतलब है हम गार्डन में कितने खुश थे। देन द स्प्रिंग केम एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स। फिर क्या होता है, बसंत आती है और पूरे देश में जो है छोटे छोटे फूल उगाए हैं और छोटी छोटी जो पक्षी हैं वो इधर उधर चहक रहे हैं, गाना गा रहे हैं, उड़ रहे हैं। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर, और सिर्फ उस सेल्फिश जायंट के गार्डन में ही जो है अभी भी सर्दी थी। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन। अब जो पक्षी हैं वो बिल्कुल भी गाना नहीं गाते थे उसके गार्डन में आकर के, क्योंकि वहां कोई बच्चे नहीं थे। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और जो पेड़ हैं उनपे भी अब फूल लगना जो है, फूल उगना जो है बंद हो गया था, और पक्षियों का भी गाना जो है वो बंद हो गया था। वंस अ ब्यूटिफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, बट वेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन दैट इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन एंड वेंट ऑफ टू स्लीप। एक बार एक सुंदर सा फ्लावर जो है वो अपना सर उठाता है, घास से अपना सर उठाता है और बाहर की ओर झांकने की कोशिश करता है, बाहर की ओर झांकता है, दीवार से बाहर रास्ते की ओर झांकता है, तो इतने में ही उसे नोटिस बोर्ड दिख जाता है। और वो नोटिस बोर्ड पढ़कर जो है उसे बहुत ही दुख होता है। बच्चों के लिए वो सोचता है कि ये इसने बच्चों को मना करने के लिए लगा दिया है, अब बच्चे तो आ नहीं पाएंगे। तो अब वो क्या करता है, फिर दुखी होकर के दोबारा से जो है वो घास में जाकर के सो जाता है। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट, सिर्फ वो ही लोग खुश थे, जो लोग खुश थे उन लोगों का नाम है स्नो एंड फ्रॉस्ट। अब इस पैराग्राफ में क्या है जो अब हम शुरू करने वाले हैं, इस पैराग्राफ में नेचर की चीजों को जो है एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन दिखा करके उनके बारे में उनके डायलॉग्स जो हैं अब आगे बताएंगे। मतलब इस पैराग्राफ में जो है, या यूं कहें स्टोरी में जो है, नेचर की काफी चीजों को जो है पर्सोनिफाई कर दिया गया, मानवीकरण कर दिया गया है, और उनको इंसानों की तरह दिखाया गया। जैसे इंसान आपस में बात करते हैं वैसे ही बर्फ हुआ, ओले हुए, हवा हुई, ये भी आपस में जो है एक दूसरे से बात करते हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पे स्नो और फ्रॉस्ट के लिए पीपल वर्ड यूज किया गया है। देखो, द ओनली पीपल हु आर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट क्या होता है, जो बर्फ जम जाती है ना घास पे, ओस जो जम जाती है, सॉरी, जो ओस जो होती है वो जब जम जाती है घास पे उसे फ्रॉस्ट कहते हैं। अब बर्फ और जो ओस है वो आदमी तो है नहीं, फिर यहाँ पे पीपल क्यों यूज किया हुआ है, क्योंकि इनका मानवीकरण कर दिया गया है, इनका इनको पर्सोनिफाई कर दिया गया है, ठीक है। अब ये उसी तरह से बात करते हैं एक दूसरे से जैसे इंसान बात करते हैं। स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन। अब वो एक दूसरे से क्या कह रहे हैं कि जो स्प्रिंग है, जो बसंत है, वो इस गार्डन को तो भूल ही गई है। ठीक है, जैसे कि वो आना ही यहाँ भूल गई है, वो रास्ता ही इस गार्डन का भूल गई है, बसंत तो यहाँ आएगी नहीं। सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड, तो बस हम ही यहाँ रहेंगे पूरे साल, बस हम ही रहेंगे, यानी कि पूरे साल बस सर्दी ही रहेगी। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद अ ग्रेट वाइट क्लॉक। बर्फ ने क्या किया, घास को जो है एक सफेद क्लॉक, क्या होता है एक तरीके से चादर से भी हम समझ सकते हैं, चादर या फिर एक ऐसा आउटफिट होता है, एक ऐसा कपड़ा होता है जो कि हम शोल्डर्स पे, हमारे पूरे बॉडी पे हम पहनते हैं, और वो बहुत ही ढीला ढीला होता है, बाजू से भी बहुत ढीला होता है। जैसे भूत की सीरियल्स में आपने देखा होगा कि जो भूत पहन के रखते हैं ना, ढीला ढीला झोला जैसा, जो बॉडी पे फिट भी नहीं होता है, लटक रहे होते हैं, हाथ लटक रहे होते हैं ऐसे, तो ऐसे कपड़े को जो है, ऐसे आउटफिट को जो है क्लॉक कहते हैं। तो बर्फ जो है, बर्फ ने भी ये पहना हुआ है, और वो किस रंग का है, वो सफेद रंग का है, और उससे जो है उसने पूरी घास को जो है ढक दिया है। और फ्रॉस्ट ने क्या किया, फ्रॉस्ट यानी जमी हुई ओस, ठीक है। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। फ्रॉस्ट ने क्या किया, ओस ने क्या किया, जो भी पेड़ हैं उस खास तौर से उनकी जो पत्तियां हैं उनको ढक दिया। किससे ढक दिया, जो है बर्फ, बर्फ जो है जब वो जम गई, ओस जो जम गई है, तो वो सफेद सफेद हो जाती है। आपने देखा भी होगा सर्दियों में जो है पत्तियों पे खास तौर से जो है वो सफेद सफेद हो जाते हैं भार भार से। तो उसने कवर्ड विथ सिल्वर का मतलब क्या है, सिल्वर कैसे होता है, चांदी, सफेद रंग का, तो उसी रंग से जो है, उसी तरीके से जो है पत्तियों को भी यहाँ पे ढक दिया है। फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। अब वो जो है सिल्वर की तरह दिख रहे हैं, सिल्वर की तरह चमक रहे हैं पत्तियां, क्योंकि उनको भी अब ढक दिया गया है जमी हुई ओस से, ओस जो है वहां जम गई है, इसलिए वो सिल्वर जैसे दिख रहे हैं, चांदी जैसे दिख रहे हैं। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम एंड ही केम। फिर उन्होंने जो है नॉर्थ विंड, यानी कि ये बहुत ही तेज हवाएं होती हैं, इनको जो है बुला लिया कि तुम भी हमारे साथ आकर रहो। किन्होंने बुलाया, स्नो और फ्रॉस्ट ने बुलाया। किसको बुलाया, नॉर्थ विंड को बुलाया कि तुम भी हमारे साथ यहाँ आकर के रहो। एंड ही केम, और नॉर्थ विंड जो है आ गया। ही वॉज रैप्ड इन फर्स एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन। रैप्ड इन फर्स, यानी कि जो नॉर्दर्न विंड है वो भी वहां पे आ जाती है, ठीक है। और वो नॉर्दर्न विंड कैसी होती है, ये बहुत ही शोर के साथ आती है, बहुत ही आवाज करती हुई, तेज तेज हवाएं जब चलती है, भारी हवाएं जब चलती है, तो आवाज करती हुई जो है वो उस गार्डन में आ गई है। एंड ब्लू द चिमनी पोर्ट्स डाउन, और ऐसे कुछ वहां पे बर्तन थे जिनमें पोर्ट्स जो होते हैं मतलब घड़े जैसे, या कोई भी बर्तन जिनमें जो है आग जल रही थी, ठीक है, सर्दी का मौसम है तो आग जलाई हुई थी। तो सारे जो भी चिमनी है, जो जहां जहां भी आग जली हुई है उनको बुझाती हुई वो हवा जो है आगे बढ़ती चली जा रही है और उसके गार्डन में आ गई है, ठीक है। दिस इज अ डिलाइटफुल स्पॉट ही सेड, वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट। सो द हेल केम। अब जो नॉर्थ विंड है वो क्या कहती है कि ये तो बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है, सुंदर जगह है। डिलाइटफुल यानी सुंदर, अच्छी, और स्पॉट यानी जगह। वो कहता है कि ये तो बहुत ही सुंदर जगह है, वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट, हमें जो है हेल को भी बुलाना चाहिए। हेल क्या होता है, ओले, ठीक है, हमें ओलो को भी यहाँ पर बुलाना चाहिए। सो द हेल केम, और ओले जो है वो आ भी गए। अब ओले आते हैं तो क्या होता है, बिल्कुल एक तो आवाज करते हुए आते हैं, जब भी घरों पे गिरते हैं तो बहुत ही जोर से वो आवाज करते हैं और चीजें तोड़ते हुए नीचे आते हैं। आपको पता है ओला, ओले एक ओला भी जो होता है इतनी स्पीड से आता है कि अगर किसी चीज पे गिर जाए तो उसमें उस पर निशान तो अपने पक्का छोड़ करके ही जाएगा। तो जब ओले आए तो यहाँ चैप्टर में क्या हुआ वो अब आगे है कि एवरी डे फॉर 3 आवर्स ही रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैसल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो। अब हर दिन जो है 3 घंटों के लिए वो ओले क्या करते थे, ओले आते थे विजिट यानी वो अपनी छोटी सी जो है एक विजिट दे देते थे, गार्डन में आ जाते थे हर दिन 3 घंटे के लिए वो आते थे। और क्या करते थे कि जो रूफ है कैसल की, कैसल होता है महल, पैलेस, ठीक है, तो महल पे जो है छत से वो आते थे और आवाज करते हुए। और कैसी आवाज थी? रैटलिंग, जो यहाँ पे रैटल लिखा हुआ है। तो रैटल का क्या मतलब होता है? जब ये वो आवाज होती है जब तेज हवाएं चलती हैं और खिड़कियां जब आपस में ऐसे खड़खड़ खड़खड़ करती है ना, तो उस आवाज को रैटल्ड कहते हैं। तो ऐसी आवाज करते हुए जो ओले जो हैं हर दिन 3 घंटे के लिए आते हैं और उस महल की छत से जो है गिरते हैं। और वो गिरते हैं तो अपने साथ क्या क्या तोड़ते हैं? ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स। स्लेट क्या होता है? एक पत्थर होता है जिसको, जो कि बहुत ही आसान होता है उसके टुकड़े करने में, ठीक है, उसकी लेयर बनाने में बहुत ही आसानी होती है। स्लेट को पट्टी भी कहते हैं, जो हम चौक से जिस पर लिखते हैं, जिस पर पढ़ाई करते हैं, तो उसे पट्टी भी कहते हैं। और इसके घर भी बनते हैं। हमारे देश में तो इतना चलन नहीं है, लेकिन हम बाहर की जो देश है, जैसे यूके ही है, लंदन है, वहां पर जो है स्लेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, इन पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है घर बनाने में। तो वो जो ओले हैं वो इनको तोड़ते हुए नीचे आते हैं और फिर बिल्कुल गार्डन के चारों ओर घूम रहे हैं और बहुत ही तेजी से घूम रहे हैं, ठीक है। एंड देन ही रन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो। वह चारों तरफ गार्डन के घूम रहे हैं बहुत ही तेजी से। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस। वो जो है ग्रे रंग के हैं और उनको देख करके ऐसे लग रहा है कि जैसे वो बर्फ जैसे हैं, और वो बर्फ जैसे ही होते हैं ओले जो होते हैं। फिर आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, सेट द सेल्फिश जायंट एज ही सेट एट द विंडो एंड लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड व्हाइट गार्डन। अब जो जायंट है वो अपनी खिड़की से जो है अपने सफेद और ठंडे गार्डन को देख के बोल रहा है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि बसंत जो है वो इतनी देरी क्यों कर रही है मेरे गार्डन में आने के लिए। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर। वो कहता है कि मुझे ये उम्मीद है कि जो मौसम है वो जरूर बदलेगा, वेदर यानी मौसम। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉर द समर। लेकिन बसंत कभी आया ही नहीं, और सिर्फ बसंत ही नहीं गर्मी भी कभी नहीं आई उस गार्डन में, ठीक है। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन बट टू द जाइंट्स गार्डन शी गेव नन। पतझड़ का मौसम भी चला गया और सभी के घरों में, सभी के गार्डन में जहां जहां भी पेड़ लगे हैं, अच्छे अच्छे फल आए, सुनहरे फल आए, लेकिन सिर्फ उसके गार्डन में ही जितने भी पेड़ हैं अभी भी उन पेड़ों पे जो है फल नहीं आए हैं। ही इज टू सेल्फिश शी सेड। अब जो है पतझड़ कहता है कि, पतझड़ कहती है कि ये जो जायंट है ये बहुत ही मतलबी है, तो हम इसके गार्डन में नहीं आएंगे, हम इसके गार्डन में जो है फल नहीं देंगे। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डेंस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज। अब जो है पूरे साल सच में सर्दी ही रही, विंटर ही रहा उसके गार्डन में। और अब तक 4 आदमी वहां रह रहे थे गार्डन में। नॉर्थ विंड था, हेल था, फ्रॉस्ट था और स्नो था। और चारों जन क्या करते हैं, उनको लग रहा है वो हमारा राज आ गया है, अब कभी यहाँ बसंत नहीं आएगी, कभी पतझड़ नहीं आएगा, कभी गर्मी नहीं आएगी, और पूरे साल जो है विंटर ही रहेगी। तो वो इस खुशी में जो है नाच रहे हैं, पेड़ों के आसपास नाच रहे हैं। वन मॉर्निंग द जाइंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक। एक सुबह क्या होता है कि जो जाइंट है वो अपने बेड पे लेटा हुआ है, वो सो नहीं रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है लाइंग अवेक, जब हम जागते हुए नहीं सो रहे होते हैं, बेड पे लेटे होते हैं लेकिन हमारी आंखें खुली होती हैं, तो उसी तरह से वो भी लेटा हुआ है। और अचानक से जो है उसे बहुत ही प्यारा म्यूजिक सुनाई देता है। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाय। वो इतना प्यारा था कि उसने सोचा कि शायद जो राजा के जो संगीतकार हैं, म्यूजिशियंस यानी संगीतकार, वो पास से गुजर रहे हैं, इसीलिए जो है वो साउंड म्यूजिक वो लोग क्रिएट कर रहे हैं, म्यूजिक वो लोग गाते हुए चल रहे हैं, इसीलिए शायद इतना प्यारा म्यूजिक आ रहा है। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो। लेकिन वहां कोई संगीतकार नहीं था, बल्कि एक छोटी सी प्यारी सी लिनेट बर्ड थी जो कि गाना गा रही थी। ठीक है, अब लिनेट का मीनिंग यहाँ पर नीचे दिया भी हुआ है पेज नंबर 19 पे। अ ब्राउनिश सॉन्ग बर्ड फाउंड इन यूरोप, एक भूरे रंग की गाना गाने वाली चिड़िया होती है जो कि सिर्फ यूरोप में ही मिलती है। बट इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन दैट इट सीम टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड। अब उसे ऐसा क्यों लगा कि ये जो गाना है ये दुनिया का सबसे प्यारा गाना है, क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया था किसी भी पक्षी की आवाज सुने, क्योंकि काफी लंबे समय से जो है उसके गार्डन में सर्दी ही थी जिसकी वजह से कोई भी चिड़िया उसके गार्डन में नहीं आई। तो उसने बहुत टाइम बाद किसी पक्षी का गाना सुना तो वो सोचता है कि ये जो गाना है ये दुनिया का सबसे प्यारा गाना है। और उस पक्षी के गाना गाते ही क्या हुआ उस गार्डन में, देन द हेल स्टॉप डांसिंग ओवर हिज हेड एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग। जैसे ही पक्षी ने गाना गाना शुरू किया जो ओले हैं वो रुक गए और जो नॉर्थ विंड है जो बर्फीली हवाएं हैं वो चिल्लाना जो है उन्होंने बंद कर दिया। एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट, और जो उसकी खुली हुई खिड़कियां थी वहां से एक बहुत ही प्यारी सी परफ्यूम जो है जो कि बहुत ही अच्छी स्मेल कर रही है वो उस तक पहुंची। किस तक पहुंची? उस सेल्फिश जायंट तक। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज कम एट लास्ट सेड द जायंट एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट। अब जो जायंट है वो अपने बेड से कूदता हुआ और बाहर देखता हुआ कहता है कि अब मुझे लगता है कि मेरे गार्डन में भी आखिरकार स्प्रिंग आ ही गई, आखिरकार बसंत आ ही गया। अब वो बहुत ही खुश है। तो यहाँ पे हमारा जो है फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया है और अब जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर्स फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसका जो पहला क्वेश्चन है इस पार्ट का वो है व्हाई इज द जायंट कॉल्ड सेल्फिश, जायंट को मतलबी क्यों बताया गया है। तो इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 18 पे जो कि फर्स्ट पैरा है। फर्स्ट पैरा माय ओन गार्डन से जो लाइन शुरू हो रही है वहां से लेकर के आप जो है आंसर टिक कर लीजिए अपनी बुक में। माय ओन गार्डन से टिक कीजिए और कहां तक टिक करोगे, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, ये जो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है ना, प्रोसिक्यूटेड तक जो है टिक कर लीजिए, ये इसका आंसर है। माय ओन गार्डन से प्रोसिक्यूटेड तक, इसका मतलब क्या है कि उसे मतलब ही क्यों बताया गया, क्योंकि वो बच्चों को ये कह करके भगा देता है कि मेरा गार्डन सिर्फ मेरा ही गार्डन है और यहाँ पर सिर्फ मैं ही खेलूंगा और कोई नहीं खेलेगा। इतना ही नहीं, वो उन्हें भगाने के बाद एक दीवार भी बना देता है कि दोबारा कोई ना आ पाए, और उस दीवार पे लिखा देता है कि घुसपैठियों को सजा मिलेगी। वो बच्चों को घुसपैठिया बता रहा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अब जो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, ऑन वन ओकेजन द चिल्ड्रन सेड हाउ हैप्पी वी आर हियर, लेटर दे सेड हाउ हैप्पी वी वर देयर, व्हाट आर दे रेफरिंग टू इन बोथ द केसेस। अब बच्चे जो इस चैप्टर में एक बार तो कह रहे हैं कि हाउ हैप्पी वी आर हेयर, हम यहाँ पे कितने खुश हैं, और एक बार वो कहते हैं, बाद में वो कहते हैं कि हाउ हैप्पी वी वर देयर, कि हम वहां कितने खुश थे। तो यहाँ वहां से बच्चे किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं यहाँ वहां से। तो यहाँ वहां से जो बच्चों का मतलब है वो है गार्डन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि गार्डन, जो हियर एंड देयर जो है वो गार्डन के लिए यूज कर रहे हैं, कि पहले कितने खुश थे जब जायंट नहीं था और वो गार्डन में आसानी से खेल रहे थे, तब वो एक दूसरे से कहते हैं कि हाउ हैप्पी वी आर हियर, हम इस गार्डन में कितने खुश हैं। और उसके बाद जब जायंट वापस आ जाता है और बड़ी सी दीवार बना देता है तो दीवार के बाहर खड़े होकर के वो कहते हैं हाउ हैप्पी वी वर देयर, कि हम वहां कितने खुश थे। तो यहाँ पे जो वहां है वो भी वो गार्डन को ही कह रहे हैं। अब थर्ड क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। तो पहला पार्ट, व्हेन स्प्रिंग केम इट वाज स्टिल विंटर इन द गार्डन, व्हाट डज विंटर स्टैंड फॉर और इंडिकेट हियर। जब बसंत आती है पूरे देश में तो उसके गार्डन में अभी भी सर्दी है, तो इस सर्दी का मतलब क्या है, इस सर्दी से जो राइटर है वो क्या कहना चाहता है। अब सर्दी का मौसम कैसा होता है, बिल्कुल बेजान, लाइफलेस, खालीपन, कोई मतलब आसपास सब पेड़ वेड़ भी सब सूख जाते हैं। तो इस चैप्टर में जो है सर्दी का मौसम सिर्फ मौसम ही नहीं है, सर्दी का जो मतलब है वो सिर्फ मौसम नहीं है, सर्दी का मतलब यहाँ पर होता है इस चैप्टर में है कि एक नेगेटिव एनवायरनमेंट, एक नकारात्मक एनवायरनमेंट जो कि बिल्कुल बेजान है, लाइफलेस है, खालीपन जैसा माहौल है, बिल्कुल खाली खाली सा, वहां कोई नहीं है, कोई खुश नहीं है, कोई सुखी नहीं है, क्योंकि बच्चे तो वहां है ही नहीं। बच्चों से इस चैप्टर में बच्चों से मतलब है कि जिंदगी, खुशी, चहल पहल। तो वो खुशी नहीं है उसके गार्डन में, और वो चहल पहल नहीं है, बेजान है, बिल्कुल बिल्कुल नकारात्मक जो है एनवायरनमेंट बना हुआ है। तो इन सब चीजों को विंटर से दिखाया गया है। बसंत को दिखाते हैं काफी खिला खिला खुशहाल माहौल, और विंटर का मतलब है बहुत ही नकारात्मक माहौल जहां पर कोई भी खुश नहीं है। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट। विंटर हैज बीन प्रेजेंटेड लाइक अ स्टोरी विद इट्स ओन कैरेक्टर्स एंड देयर एक्टिविटीज। डिस्क्राइब द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। चैप्टर में जो है विंटर को एक कहानी की तरह दिखाया गया है जिसके अपने अपने किरदार हैं और उनकी कुछ हरकतें हैं। तो इन सबको जो है अपनी स्टोरी में अपनी एक कहानी बना करके इन सबको जो है लिखो। अब थर्ड का जो आंसर है, सेकंड पार्ट का, थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो आपको पेज नंबर 18 पे ही मिलेगा। और एकदम लास्ट वाली जो लाइन है, एकदम लास्ट वाली लाइन जो द बर्ड्स डिड नॉट केयर से शुरू हो रही है, वहां से द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग, ठीक है, यहां से सबसे लास्ट में, यहां से फिर पेज नंबर 19 पे आइए। आपको टिक करना है पूरा शुरू का पहला पैराग्राफ, ब्रेथ वॉज लाइक आइस, यहां तक, एकदम शुरू का जो पहला पैराग्राफ है पूरा ब्रेथ वॉज लाइक आइस तक है। अब इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि इतना बड़ा आंसर क्यों है, इसको आप छोटा करके लिख सकते हैं, और कैसे लिखना है ये मैं आपको बता देती हूँ अभी। अभी इस आंसर को देख करके घबराने की जरूरत नहीं है, इसको छोटा कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जो विंटर जो खुद एक स्टोरी की तरह दिखाया गया है इस चैप्टर में, तो विंटर के कैरेक्टर्स कितने हैं, विंटर के जो है 7 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, कुल मिला के 7 कैरेक्टर्स है। आप जो है इन 7 कैरेक्टर्स को एक बार लिख लो, मैं बोल रही हूं और आप उसे लिखते जाइए। पहला कैरेक्टर है बर्ड्स, दूसरा है ट्रीज, फास्ट फास्ट लिख लीजिए, तीसरा है फ्लावर, फोर्थ है स्नो, फिफ्थ है फ्रॉस्ट, सिक्स्थ है नॉर्थ विंड, और सेवेंथ है हेल। तो इस आंसर को हम कैसा छोटा करके लिखेंगे, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि उस विंटर के सारे किरदारों के नाम बताइए और उनकी हरकतों के बारे में बताइए। तो ये 7 किरदार हैं विंटर के, ठीक है, और इनकी क्या क्या हरकतें हैं, क्या क्या इन्होंने चैप्टर में किया है उनके बारे में लिखना है। तो आप इस आंसर को कैसे लिखेंगे, पहले ये 7 वर्ड्स लिख लीजिए और उनके आगे छोटी सी डैश बना करके इनकी क्या क्या हरकतें रही विंटर के माहौल में वो लिख दीजिए, बस आपका आंसर यहीं तक है। और ये लाइन जो है ये आपको जहां से जहां तक मैंने टिक करवाया है उसमें आपको मिल जाएगा। जैसे बर्ड्स ने क्या किया विंटर में, उन्होंने गाना छोड़ दिया, ट्रीज ने क्या किया फूल उगाना छोड़ दिया, फ्लावर ने क्या किया खिलना जो है वो बंद कर दिया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, बर्ड्स ने क्या किया गाना गाना बंद कर दिया, ठीक है, ट्रीज ने क्या किया पत्ते उगाना बंद कर दिया, फल उगाना बंद कर दिया, फ्लावर ने क्या किया खिलना बंद कर दिया सर्दी के मौसम में, ठीक है, स्नो ने क्या किया स्नो ने जो है पूरी घास को एक सफेद चादर से ढक दिया, फ्रॉस्ट ने क्या किया जितनी भी पेड़ की पत्तियां थी उनको ढक दिया और उनको चांदी जैसा कर दिया, उनको भी ढक दिया, ठीक है, नॉर्थ विंड ने क्या किया बिल्कुल शोर करती हुई आई और जहां जहां भी आग जल रही थी उनको बुझा दिया, हेल ने क्या किया हेल भी शोर करती हुई आई और जो है तोड़फोड़ मचा दी, गार्डन के चारों ओर तेजी तेजी से घूमने लग गई और छत भी थोड़ी सी तोड़ दी, ठीक है। तो बस आपका आंसर हो गया शॉर्ट, ये 7 कैरेक्टर्स लिख लीजिए और इनके आगे आगे एक एक लाइन लिख लीजिए, इन्होंने क्या क्या किया मैंने आपको समझा दिया है। और अब उस पैराग्राफ में से भी देख देख के एक एक लाइन सबके बारे में लिख लेना, पूरा पैरा नहीं लिखना, ठीक है। अब क्वेश्चन 4th, वॉज द जाइंट हैप्पी और सैड ओवर द स्टेट ऑफ द गार्डन। जायंट खुश था या फिर ना खुश था अपने गार्डन की हालत को देख करके। तो जो जायंट है वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, ठीक है, वो बहुत ही दुखी था। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 19 पे सेकंड पैरा। जो कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड से शुरू हो रहा है, ठीक है। यहां से लेकर के आप टिक कर लीजिए वेदर तक, तीन जो लाइनें हैं आई कैन नॉट अंडरस्टैंड से 1 2 3 वेदर तक आप टिक कर लीजिए। वो कहता है, हमें कैसे पता लगा कि वो नाखुश है, क्योंकि वो कहता है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा बसंत इतनी देर क्यों कर रही है मेरे गार्डन में आने में। वो और फिर वो ये उम्मीद भी लगाता है कि आई होप देर विल बी अ चेंज इन द वेदर, कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मौसम मौसम में बदलाव हो, बसंत आए। अगर वो खुश होता तो उसे तो बदलाव की जरूरत ही नहीं है, वो तो खुश है कि सर्दी है ठंड है, लेकिन वो खुश नहीं है, इसलिए वो चाहता है कि बसंत आए। तो ये इसका आंसर है, ठीक है, आई कैन नॉट से वेदर तक। अब क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इफेक्ट डिड द लिनेट सॉन्ग हैव ओवर हेल एंड द नॉर्थ विंड। लिनेट जो पक्षी है उसका गाना सुनते ही ओलो पे और नॉर्थ विंड पे क्या असर हुआ। तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 19 पे ही, जो एकदम आखिरी का पैरा है। अब इन दोनों पे क्या असर हुआ कि ओले जो हैं वो बिल्कुल बंद हो गए, गिरना बंद हो गए, अब वो नहीं गिर रहे हैं, और जो नॉर्थ विंड है उसने चिल्लाना और शोर करना जो है बंद कर दिया है। पेज नंबर 15 पे इसका आंसर है एकदम लास्ट के पैरा में, एकदम आखिरी के पैरा में, 6th लाइन, ठीक है, जो थर्ड पैरा है वहां वहां पे 6th लाइन से आप 6th लाइन काउंट कर लीजिए, जो कि देन द हेल से शुरू हो रही है। देन द हेल 6th लाइन काउंट कर ली, छठी लाइन देन द हेल स्टॉप्ड पे आ जाइए, यहां से आपको टिक करना है देन द हेल से सीज्ड रोरिंग, ठीक उसके नीचे वाली लाइन लाइन पे है और रोरिंग तक आपको टिक करना है, रोरिंग पे खत्म कर दीजिए टिक लगाना, देन द हेल से शुरू कीजिए और रोरिंग पे खत्म कर दीजिए। देन द हेल स्टॉप डेंसिंग ओवर हिज हेड एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग। ओले रुक गए, ओले नाच नाच रहे थे तो वो नाचना उन्होंने छोड़ दिया और वो रुक गए, बिल्कुल शांत हो गए, और नाचना मतलब बेसिकली यही कि वो गिर रहे थे और अब गिरना बंद हो गया है, और जो नॉर्थ विंड है सीज्ड रोरिंग, सीज्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रोक देना, चुप करा देना, ठीक है, रोक देना, पकड़ पकड़ लेना। जो नॉर्थ विंड है उसने रोर करना, चिल्लाना, शोर करना, दहाड़ना, रोरिंग बेसिकली इसका मतलब होता है दहाड़ना, तो उसने जो दहाड़ना है वो बंद कर दिया है, सीज यानी रोक देना, स्टॉप कर देना, ठीक है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया है, अब आगे हम सेकेंड पार्ट जो है वो कल से शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।